श्रोताओं नमस्कार। यूरोपीय इतिहास के इस सफर में आइए अब हम आपको ले चलते हैं रूस। जी हाँ, रूस, और अवगत कराते हैं आपको रूस की सभ्यता तथा वहाँ पे हुए सुधारों से। तो आइए हम अध्ययन करते हैं रूस की क्रांति और रूस में हुए सुधारों का। हमारा समय है 1867 से 1917 तक। आइए शुरू करते हैं रूस में हुए सुधारों को। क्रांति किसी भी देश में हो उसका महत्व विश्वव्यापी होता है। फ्रांस की क्रांति मुख्यतः पूंजीपति वर्ग के हितों के रक्षा के लिए हुई थी, पर सारी दुनिया के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन गई। रूस की क्रांति तो सामान्य हितों में हुई थी और उसका परिप्रेक्ष्य भी सीमित नहीं था। समाज का आमूल परिवर्तन उसका लक्ष्य था। दुनिया के इतिहास को उसने सर्वथा एक नया मोड़ दिया। मध्ययुगीन सामंती और स्वेच्छाचारी जारों द्वारा शासित रूस में अभी औद्योगिकरण का प्रारंभ ही हुआ था। जापान जैसे छोटे देश से वह पराजित हो गया। प्रथम विश्व युद्ध आतंकलिप्त था, और ऐसे देश में फरवरी 1917 में जब जाज का तख्ता पलट किया तो लोग चौंक पड़े। रूस में क्रांति के बाद गठित सरकार उदारवादी सरकार की स्थापना हुई और पश्चिमी देश आश्वस्त हो गए कि रूस में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा जो उनके हित में न हो। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब अक्टूबर की क्रांति हुई और लेनिन के नेतृत्व में वहां जनता सत्ता में आई तो यह निश्चित हो गया कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, इसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ेगा। संयोग से सारा विश्व उस समय जर्मन गुट के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था और क्रांति को अपनी जड़ें मजबूत करने का अवसर मिल गया। बाहरी हस्तक्षेप, आंतरिक विरोध, गृहकाल, अकाल और आर्थिक संकट आदि के बावजूद कुछ ही वर्षों में सोवियत रूस सरकार भली भांति स्थापित हो गई और न केवल रूस से शोषण और समानता पर आधारित समाज का अंत हो गया, वरन सारी दुनिया के संतुष्ट लोगों में रूस की आशा की किरण दिखाई देने लगी। भारत के भी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता जवाहरलाल नेहरू को भारत के उज्ज्वल भविष्य में फिर से विश्वास हो गया। एक महत्वपूर्ण क्रांति को भली भांति समझा जाने लगा। क्रांति की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना पड़ेगा जिसमें क्रांति के बीज पनप रहे थे। रूस यूरोप के सबसे पिछड़े देशों में से था। वहां एशियाई प्रवृत्ति से समाज ग्रस्त था। यूरोप में रूसी लोगों का तातार प्रभाव के कारण बर्बर समझा जाता था। मैक्सकोवी की छोटी सी रियासत पर जब से रोमानोफ वंश का शासन हुआ यह स्थिति बदलने शुरू हुई। यद्यपि सामंती प्रथा और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के चंगुल में फंसे रूसी समाज का विकास बहुत दूर था, लेकिन उसका सैनिक संगठन बढ़ता जा रहा था। पहले 17वीं शताब्दी के अंत में पीटर ने रूस को महानता की ओर अग्रसर किया। उसने तुर्की और स्वीडन को परास्त कर रूस की सीमाएं दक्षिण में काला सागर और पूर्व में बाल्टिक सागर तक बढ़ाया। सागर तट के लिए प्यासे रूस की तृप्ति विस्तार में था, उसका क्रम शुरू हो गया। साथ ही पीटर ने छद्म वेश में पश्चिम यूरोप की यात्रा कर स्वयं आधुनिकता और प्रगति के तरीके समझे। लौटकर उसने चर्च के पेट्रीआर्क को अपदस्थ किया और शासन पूरी तरह से अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। उसने रूस का पश्चिमीकरण शुरू कर दिया। बाल्टिक तट पर सेंट पीटर्सबर्ग नामक राजधानी बसाई और लोगों के वस्त्राभूषण से आचार व्यवहार की कड़ी कठोरता के साथ पश्चिमी तौर तरीके अपनाने के नियम बनाए। उसके अपने एकमात्र पुत्र ने जब अवरोध पैदा करना चाहा तो उसकी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मरने से पहले वह अपने देश को महानता के मार्ग पर अग्रसर कर पीटर स्वयं महान कहलाने लगा था। पीटर महान के बाद रूस अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, लेकिन शीघ्र ही कैथरीना ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने पति जार की हत्या से लेकर पड़ोसी राज्यों को हड़प लेने तक उसने बिना किसी नैतिकता की परवाह किए अपने शासन काल में रूस का विस्तार करती रही। उसने पोलैंड का 3 बार विभाजन करवाया और अंतिम विभाजन के बाद पोलैंड यूरोप के नक्शे से विलीन हो गया। दक्षिण में उसने काला सागर की जर्मनी की जर्मन तुर्की से की जमीन तुर्की से छीन ली और आधुनिक रूस की सीमाएं बहुत निश्चित हो गईं। उसने प्रबुद्धता का मुखौटा जरूर लगाया, वाल्टियर की मित्रता का स्वांग भी रचा, लेकिन हकीकत में रूस एक स्वच्छाचारी मध्ययुगीन व्यवस्था बनी रही। फ्रांस की क्रांति का सारे यूरोप पर असर पड़ा, लेकिन रूस बचा रहा। नेपोलियन की विजयवाणी मास्को तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे परास्त होकर लौटना पड़ा। नेपोलियन की पराजय ने संयोग से जॉर्ज अलेक्जेंडर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रूसी सेनाओं फ्रांस तक पहुंच गई। वहां नए विचारों ने रूसी मस्तिष्क को प्रभावित भले ही किया हो, पर उसका रूसी शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेटर्निक युग में रूस में भी दमन होते रहे और परिवर्तन की आकांक्षा रौंदी जाती रही। इस काल में रूस बालकन पर ललचाई आंखों से देखने के लिए जाना जाता रहा। अलेक्जेंडर द्वितीय ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थोड़े सुधार किए। पहली बार रूस में ही अर्ध गुलामों को मुक्त किया गया, लेकिन समाज का मूल ढांचा अपरिवर्तित रहा। सारे यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बढ़ रहा था, अर्थतंत्र और उसी के अनुसार राजतंत्र बदल रहे थे, लेकिन रूस में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हो रहा था। ऐसे रूढ़िवादी समाज को तहस नहस कर देने की बात करने वाला निहिलिज्म तुर्गेनेव के साहित्य के माध्यम से फैल रहा था। दोस्तोवस्की के उपन्यास निराशा फैला रहे थे, लेकिन परिवर्तन के झोंकों को कौन रोक पाता, और वह भी कब तक। उत्तर पश्चिमी रूस में उद्योग पनपने लगे थे। वहां मजदूरों का वर्ग संगठित होता जा रहा था, राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी और गुप्त संगठन भी बनने लगे। आतंक के सहारे जार और उसके अधिकारियों को अंत करने की योजनाएं बनाए जाने लगी और कुछ आतंकवादी क्रांतिकारी इधर उधर बम विस्फोट करने लगे। उनको कठोरतम सजाए देकर जार भी आतंकित करता रहा, लेकिन राजनीतिक चेतना का विस्तार होने लगा। 1905 में रूसी सेनाओं के जापान द्वारा परास्त हो जाने के बाद रूसी महानता का खोखलापन प्रत्यक्ष हो गया। 1905 में पहली बार जार को रूस में एक प्रतिनिधि सभा बुलानी पड़ी। यह सभा अस्थायी न हो सकी और बार बार भंग की जाती रही। जब प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ तो रूस जर्मनी की चपेट में आ गया। विपन्न रूस ने भयानक आर्थिक संकट पैदा हो गया। रूसी भूमि पर जर्मन सेनाएं मौजूद थीं। अब वैचारिक प्रभाव संगठित रूप से दबाव डाला जा रहा था। समाजवादी दल का नेता लेनिन निर्वासित था और वह संगठित रूप से दबाव डाल रहा था। 1917 में मजदूरों ने विद्रोह किया। सैनिकों ने दमन में साथ नहीं दिया, लेकिन लेनिन ने विदेश से वापस आकर क्रांति की बागडोर संभाल ली और अक्टूबर की क्रांति ने रूस को वास्तविक महानता के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। इस ऐतिहासिक क्रांति के कारणों का विश्लेषण करने के लिए और विस्तार में जाना पड़ेगा। पश्चिमी यूरोप में राजनीतिक जीवन का इस तरह विकास हुआ कि राजा या विशिष्ट वर्ग की प्रभुता तो बनी हुई थी, पर धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग शासन में भागीदार होते जा रहे थे। इंग्लैंड में संसद की बहुत पुरानी परंपरा थी। वहां जनप्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा था और संसद की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। यूरोप में पहले प्रबुद्ध राजतंत्र ने जनता को थोड़ा संतुष्ट किया, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने उदार शासन व्यवस्था के लिए शासकों को मजबूर किया। मेटर्निक युग के प्रतिक्रियावादी दमन के बावजूद 1870 तक सभी देशों में प्रतिनिधि सभाओं का गठन हो चुका था। वहां मध्यम वर्ग शासन में हिस्सा लेने लगा था। सुधारों का कार्यक्रम शुरू हो गया। बिस्मार्क जैसे कठोर प्रशासक को सुधारवादी नीति अपनानी पड़ी, लेकिन रूस ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जार की स्वेच्छाचारी निरंकुशता बनी हुई थी। वहां किसी भी तरह प्रतिनिधि शासक नहीं था, न तो अस्थायी स्तर पर और न ही केंद्रीय स्तर पर। रूस में शासन अत्यंत कठोर भी था। लोगों को स्वतंत्रता करने भर से स्थिति नहीं बदली थी। देश का बहुत बड़ा भूमिहीन वर्ग किसानों का था, जो पूरी तरह संतृप्त था। कुछ सामंती परिवार बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपने क्षेत्र में मनमानी करते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सारे यूरोप में ऐसे पर्चे बांटे जा रहे थे जिनमें जार को संबोधित करके उससे कहा गया कि रूस के लोग पिछड़े हुए और त्रस्त हैं। उन्हें अब यह भुलावा हो रहा था कि सारी कठिनाइयों के बावजूद वे एक महान देश के वासी हैं। रूस यूरोप की बड़ी शक्तियों में से एक है, लेकिन वह भ्रम टूटता जा रहा है। अब यदि जार ने आगे बढ़कर अपनी प्रजा को गले नहीं लगाया, तो प्रजा स्वयं आगे बढ़ेगी। इतिहासकार मैकेजी ने यह सिद्ध कर दिया कि इन पर्चों से साफ पता चलता है कि रूस में सुधारों की अनिवार्यता स्पष्ट होती जा रही थी, और यदि सुधार नहीं किए गए तो जनता विद्रोह कर सकती है। लेकिन रूस के जारों ने कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जिससे जनता वास्तव में संतुष्ट होती। इस तरह रूस का राजनीतिक जीवन राजधानियों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बंद था, और सेना पुलिस तथा जासूसों के बल पर जनता को खामोश कर सकती थी। राजधानी का वातावरण वाइजेंटाइन साम्राज्य की तरह षड्यंत्रपूर्ण था। धीरे धीरे मध्यम वर्ग का विकास हो रहा था और शासन में सहभागी होने के लिए ललायत हो रहा था। फ्रांस की क्रांति के पहले यह स्थिति भी रूस में पैदा हो गई थी। आर्थिक रूप से रूस पूरी तरह खोखला हो चुका था। रूस यूरोप का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा देश हो चला था, लेकिन इतने बड़े देश का 20% भाग भी कृषि योग्य नहीं था। देश का उत्तरी भाग शीत कटिबंध में था, जहाँ वर्ष के अधिकांश भागों में बर्फ जमी रहती थी। उसके दक्षिणी भाग में टैगा के सदाबहार घने जंगल थे। रूस के एशियाई भाग का अधिकांश या तो जंगल था या पथरीला। यूरोपीय रूस का मध्य और दक्षिणी हिस्सा ही कृषि योग्य था। वहाँ अधिकांश भूमि के मालिक सामंत थे, जिन्हें खेती में बहुत रुचि नहीं थी। अक्सर खेत खाली पड़े रह जाते थे। अनुपस्थित जमींदार कृषि का बहुत बड़ा दुश्मन था। फिर भी जो पैदा होता था वह राज्य या भूस्वामियों के पेट में चला जाता था, और किसान और तथा खेतिहर भूखा और कंगाल ही रह जाता था। पश्चिमी यूरोप में नई फसलें उगाने और औद्योगिक फसलों की शुरुआत से स्थिति बेहतर हुई थी, लेकिन रूस में प्रयोग होते ही नहीं थे। उद्योगों के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति की एक शताब्दी बाद भी प्रायः रूस उद्योग विहीन था। कुटीर उद्योगों में केवल स्थानीय या राजधानी की आवश्यक चीज़ें ही बन पाती थीं। रूस का आयात व्यापार निर्यात से बहुत अधिक था, इसलिए वह पश्चिमी यूरोप पर पूरी तरह निर्भर था। 19वीं शताब्दी के अंत में जब पश्चिमी रूस में उद्योग लगे तो उनके मजदूरों की स्थिति का कोई ध्यान नहीं दिया। वे अत्यंत कठिन नियमों, कम मजदूरी और दमन के शिकार थे। ऐसी हालत में उद्योगों का अपेक्षित विकास तो हो ही नहीं रहा था, मजदूरों में बुरी तरह असंतोष भी व्याप्त हो रहा था। ऐसी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ी सेना और निरंतर युद्धों का खर्च बर्दाश्त करना भी मुश्किल था। 17वीं शताब्दी के अंत में ही युद्धों का सिलसिला टूटा नहीं। युद्ध हो न हो, जार की सैन्यवादी नीति हमेशा युद्ध स्तर पर तैयार रहने की थी। इससे आर्थिक ढांचा और लड़खड़ा रहा था। ऐसी भयावह और खोखली आंतरिक स्थिति के बावजूद रूस महानता का ढिढोरा पीटता जाता था। नेपोलियन के पराभव में रूस ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उससे हर रूसी गौरवान्वित हुआ था। तात्कालीन रूस का सबसे जीवित दस्तावेज लात्स्यात का उपन्यास शीत और युद्ध में रूस के बढ़ते स्वाभिमान का परिचायक है। बाद में रूस का बाल्कन में बढ़ता महत्व क्रीमिया के पराजय होने के बाद भी नहीं घटा। रूस तुर्की को बराबर पराजित कर रूस अपना गौरव बढ़ाता रहा। बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क द्वारा छले जाने के बाद रूस अकेला पड़ता जा रहा था, लेकिन जनता इससे अनभिज्ञ थी। 20वीं शताब्दी शुरू होते होते उसे फ्रांस की मैत्री प्राप्त हो गई और वह फिर अस्वस्थ रहने लगा। लेकिन 1905 में रूस को अपने इतिहास का पहला बड़ा झटका लगा। पूर्व में रूस का विस्तार सारे उत्तर एशिया पर छा गया था। अब उसकी सीमाएं प्रशांत महासागर तक पहुंच गई थी। अब उसके सामने जापान सागर के उस पार नवोदित जापान था, जो जनसंख्या और उद्योग के विकास के साथ विस्तारवादी नीति अपनाने पर मजबूर था। उसने चीन को परास्त कर अपनी ताकत बढ़ा ली थी और चीन के उत्तरी क्षेत्र पर हावी होता जा रहा था। अब जापान और रूस के हित टकराने लगे। जापान के लिए रूस से संघर्ष किए बिना इस क्षेत्र पर पैर जमाना मुश्किल था। हजारों मील दूर राजधानी में बैठे जार और रूसी सेना जापान की शक्तियों से परिचित नहीं थे। फलतः रूस एक ऐसे युद्ध में कूद पड़ा जिसके लिए वह कभी किसी तरह पहले से तैयार नहीं था। कई हजार मील की यात्रा कर रूसी सेनाएं जब पूर्व क्षेत्र तक पहुंची तो वे पहले से ही थकी और हारी हुई होती थी। ऐसी सेना को परास्त करना जापान के लिए कठिन नहीं था। 1905 के ऐतिहासिक जापान रूस युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। सुदूर पूर्व की तरह इस पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बचे खुचे फटेहाल रूसी सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश अस्तब्ध था। महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस यूरोप में ही नहीं एशिया में भी पराजित हुआ, वह भी एक छोटे से अपेक्षित अज्ञात देश से। इस पराजय ने असंतोष को विस्फोट का अवसर दिया और रूस में पहली बार एक उग्रवादी क्रांति हुई जिसकी प्रमुख मांग एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना और शासन को उदार बनाना था। यह रूस के जागते हुए मध्यम वर्ग का दबाव था और जार को प्रतिकूल स्थितियों में यह मांग स्वीकार भी करनी पड़ी। रूस में पहली बार पार्लियामेंट की स्थापना हुई और रूस पश्चिमी यूरोप के शासन तंत्र की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जार निकोलस इस नई स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा था। सभा को बार बार भंग किया जाता और बार बार वह पहले से भी अधिक संघर्ष की मुद्रा अपना लेता। इस संघर्ष की मुद्रा के पीछे वह वैचारिक तैयारी थी जो धीरे धीरे रूस के नगरों से गांवों तक फैल चुकी थी। मैक्सिम गोर्की के विश्वविख्यात उपन्यास माँ में उन तैयारियों की स्पष्ट झलक मिलती है। गांवों तक गुप्त संगठन कार्यरत थे और विद्रोह की आग सुलगने लगी थी। यद्यपि रूस का मध्यम वर्ग केवल उदारवादी परिवर्तन चाह रहा था ताकि सत्ता उनके हाथ में बनी रहे, तथापि वास्तविक संगठन समाजवादियों के हाथ में आता जा रहा था। मार्क्स की जन्मभूमि जर्मनी में ही वैज्ञानिक समाजवाद का विचार पैदा हुआ, लेकिन बिस्मार्क की कठोर नीतियों के कारण उसका प्रभाव जर्मनी के बाहर देशों में बढ़ गया। इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम जैसे देशों में मजदूर संगठनों पर मार्क्स के अनुयायियों का प्रभाव था। 1870 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद कुछ महीनों के लिए पेरिस कम्यून ने मार्क्स के विचारों को क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया। इन कम्यूनों के समाप्त होने के बाद समाजवादियों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन फैलता जा रहा था और मार्क्स था इंग्लिश में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन वास्तव में दुनिया के मजदूरों को एक कर रहा था। मार्क्स के वर्ग संघर्ष तथा सर्वहारा की अनिवार्य विजय के सिद्धांत का हम अध्ययन कर चुके हैं। यद्यपि रूस के मजदूरों की संख्या बहुत नहीं थी और वह विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां समाजवादी क्रांति की परिस्थितियां अनुकूल हो, फिर भी रूस के मार्क्स के अनुयायी बढ़ रहे थे। उन्होंने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया और उनका संगठन बढ़ रहा था। प्रतिबंधों के बावजूद उनमें अखबार और पर्चे निकलते थे और छोटी मोटी समितियों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी संगठन बनता जा रहा था। उन्होंने प्रतिनिधि सभा की मांग के संबंध में मध्यम वर्ग के आंदोलनों के साथ साथ सहयोग भी किया था। रूस के क्रांतिकारियों में प्रमुख था युग निर्माता लेनिन। लेनिन ने जारशाही के अंत की कसम खाई थी जब वह बालक था और उसके बड़े भाई को जार पर बम फेंकने के अपराध में मौत की सजा दी गई थी। उसने वकील बनने के बाद गरीबों के हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी और बाद में वह मजदूरों की समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्यपन हो गया। उसमें न केवल संगठन की क्षमता थी अपितु वह एक कुशल लेखक और प्रभावशाली वक्ता भी था। उसके आविर्भाव ने जन आंदोलनों में नई गति आ गई और उसका कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा। शीघ्र ही उसे रूस का प्रमुख क्रांतिकारी नेता समझा जाने लगा और वह अपने लेखों और भाषणों से सारे रूस में एक नई चेतना भरने लगा। जापान से पराजय के बाद रूस में प्रतिनिधि सभा स्थापित करने के बाद भंग कर दी गई और जारशाही अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं थी। इस पर आंदोलनों का अधिक उग्र होना इस पर आंदोलन और अधिक उग्र होने लगे। इस समय आंदोलन कई दलों में बटा था। एक तरफ वे लोग थे जो शांतिमय तरीके से रूस में संवैधानिक परिवर्तन चाहते थे, उनमें जो बहुत नरम थे वे आटोब्रिस्ट कहलाते थे। ये चाहते थे कि 4 अक्टूबर 1905 की घोषणा के अनुसार सभा को शासन पर नियंत्रण का अधिकार दे दे। वे सभा को जार से अधिक शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे। इस दल में सामंतों की प्रमुखता थी। दूसरे वे लोग थे जो इंग्लैंड की तरह संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे। यह मुख्यतः मध्यम वर्ग का दल था। इसमें बुद्धिजीवियों की प्रमुखता थी। इस दल को संवैधानिक जनतंत्रवादी या कैडेट कहा जाता था। इन दोनों ही दलों की किसी गतिशील और दूरदर्शी जार के सहयोगी बन सकते थे, लेकिन जार निकोलस में वह क्षमता नहीं थी कि उनका सहयोग प्राप्त करता। तीसरा दल समाजवादी क्रांतिकारियों का था। यह किसानों तथा उनकी भूमि समस्याओं के निदान का हिमायती था। उसका विश्वास था कि भूमि पर व्यक्तिगत नहीं समाज का अधिकार है। देश के भूमिहीन किसान इसकी ओर आशा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन इसका नेतृत्व उग्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था, जो हमेशा दूरदर्शिता का परिचय नहीं दे पाते थे। रूस की राजनीति में सबसे शक्तिशाली दल था सोशल डेमोक्रेट्स का। यह दल मार्क्सवाद का था और दूसरे और मजदूरों के राज्य की कल्पना करता था। 1903 में इस दल में कार्यनीति को लेकर विभाजन हो गया। दो गुट बने, मेंशेविक और बोल्शेविक। पहला क्रमशः परिवर्तन चाहता था। उसके विश्वास विकास में था। बहुमत बोल्शेविक क्रांति के पक्ष में था और मजदूरों की राज्य स्थापित करना चाहता था। धीरे धीरे बोल्शेविक लोगों का अल्पमत के लोगों से मूलतः अंतर बढ़ता गया और उनकी उग्र कार्यवाहियों के नाते बहुत से नेता जैसे लेनिन और स्टालिन गिरफ्तार हुए। स्टालिन तो कई बार गिरफ्तार हुए और कई बार भाग निकले। लेनिन सहित अनेकों को निष्कासित कर दिया गया। जब रूस ने प्रथम महायुद्ध में प्रवेश किया तो इसमें अधिकांश नेता देश के बाहर थे। रूस के नरम दल के नेता युद्धकाल में देशभक्ति के नाम पर जार के पक्ष का समर्थन करने लगे थे, पर रूस की पराजयों और भ्रष्ट शासन से उनका मोह भंग हो गया और वे भी जार को हटाने के षड्यंत्र में शामिल थे। बोल्शेविक नेता इस युद्ध को साम्राज्यवादियों की आपसी लड़ाई मानते थे और इसके विरुद्ध थे। उनके लिए मित्र राष्ट्रों और जर्मनी में कोई अंतर नहीं था। जान पर खेलकर ये नेता जहां भी थे युद्ध का विरोध करते और उसके वास्तविक चरित्र का उद्घाटन करते। इसी बीच रूस में असंतोष का एक और कारण से बढ़ता जा रहा था। पहले से ही भ्रष्ट राज परिवार पर एक रहस्यवादी भिक्षुक ग्रिगोरी रास्पुतिन का प्रभाव बढ़ रहा था। रास्पुतिन एक अशिक्षित बदमाश था जो अपने को दैवीय शक्तियों से संपन्न बताता था। वह विश्वास करने वाले मासूम लोगों के सामने चमत्कार दिखाकर उन्हें अभिभूत कर लेता। जार के परिवार में उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और जारीन तो पूरी तरह उसके चंगुल में थी। वह नियुक्तियों और पदोन्नति और बर्खास्तगी तथा प्रशासन के अन्य कामों में हस्तक्षेप करने लगा था। पहले से ही अराजक इस स्थिति में निश्चय नहीं हो पा रहा था कि वास्तव में शासन कौन कर रहा है। कुछ समय के लिए तो शासन के विरुद्ध आक्रोश मुख्य रूप से रास्पुतिन के ही विरुद्ध अभिव्यक्ति होता रहा। रास्पुतिन का प्रभाव पतनोन्मुखी मध्ययुगीन जारशाही की भ्रष्टता का ज्वलंत उदाहरण था और उसके अंत का प्रारंभ था। 1916 के अंत होते होते रूस भयानक स्थिति में फंस चुका था। अनाज की कमी हो गई। उपजाऊ पश्चिमी रूस के बड़े भूभाग पर जर्मनी का कब्जा था। बेरोजगार और त्रस्त किसान भूखे मरने लगे थे। लोहे और कोयला की कमी के कारण कारखाने बंद हो रहे थे। इससे उत्पादन तो घट ही रहा था, मजदूर भी बेकार होते जा रहे थे। स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी। सेना के लिए लाखों किसान गांव से लाकर भर्ती किए जा रहे थे। यातायात के साधन सेना के इस्तेमाल में काम कर रहे थे। परिणाम यह था कि सामान्यतः यातायात बंद होने लगा और कुल मिलाकर स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। ऐसे में शासन का मुख्य आधार सेना ही होता है और रूस की सेना अराजक स्थिति में थी। सेनापतियों में आपस में तालमेल नहीं रह गया था। लाखों सैनिक इस सैनिकों के लिए कमतन सामान जुटाना भी मुश्किल हो गया था। उनके पास न तो उपयुक्त वस्त्र थे, न ही भोजन का कोई प्रबंध व ठिकाना। संचार शासन भंग हो गए थे। समस्या यह थी कि भूखे और फटेहाल सैनिक आक्रामक दुश्मन से लड़े या रूसी ठंड से। नतीजा यह कि सैनिक अब संगठित रूप से विद्रोह करने की स्थिति में थे। सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार, पूरे देश की स्थिति जैसा हो चला था, कोई अनुशासन नहीं रह गया था। अब सेना में न लड़ने का उत्साह था और न उसकी उपयोगिता में विश्वास। ऐसे असंतुष्ट सैनिकों को बोल्शेविक राजनीतिक चेतना से लैस कर रहे थे और अब तो जारशाही को भी एक जबरदस्त झटका देने की तैयारी में थे। क्रांति की शुरुआत रोटी की मांग से शुरू हुई। 8 मई 1917 को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसका नाम हाल ही में पेत्रोग्राद रख दिया गया था, जनता रोटी रोटी चिल्लाती सड़कों पर उमड़ पड़ी। मौका देखकर उस दिन 80-90 हज़ार मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी और जनता से जा मिले। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। उग्र दल स्थिति को उचित मोड़ देने के लिए तैयार था। जब सेना की टुकड़ी भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया और उससे हथियार छीनने पड़े। राजधानी के सैनिक गवर्नर ने मजदूरों को काम पर लौट जाने की आज्ञा दी और सभा को निरस्त कर देने का हुक्म दिया। लेकिन मजदूर पीछे लौटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मजदूरों और सैनिक सदस्यों की एक सोवियत का गठन किया और सैनिक और मजदूरों के सहयोग से योजना के अनुसार आंदोलन आगे बढ़ता गया। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी प्रयोब्रासिंस्की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। इसे एक बार और सुने। प्रयोब्रासिंस्की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया और 12 मार्च तक राजधानी और मजदूरों पर सैनिकों का कब्जा हो गया। प्रतिनिधि सभा ने खुला विद्रोह तो नहीं किया, लेकिन औपचारिक रूप से मजदूरों को एक कार्यवाहक समिति में बदलकर शासन संभालना चाहा। इसी बीच सैनिकों और मजदूरों ने अपनी कार्यकारिणी समिति बना ली थी। राजधानी में दो सरकारें थीं, इन दोनों के मिलाने का प्रयास हुआ। सभा ने नई सरकार का प्रस्ताव किया जिसमें दो मंत्री सोवियत के होते, लेकिन सोवियत ने साफ कह दिया कि सभा का सरकार मध्यम वर्गीय है और क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ और सहयोग संभव नहीं। बहरहाल कार्यवाहक सरकार बनी और उनमें समाजवादी क्रांतिकारी का नेता करेंस्की शामिल कर लिया गया। सरकार में उदार दलों की प्रमुखता बनी रही। जार राजधानी से बाहर था। उसने जल्दी से लौटने चाहा, लेकिन लाइन उखाड़ दी गई। विश्वस्त सेनापति इवानोव को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया, लेकिन उसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। जार ने अब मजबूरन एक उदार और उत्तरदायी शासन स्थापित करना चाहा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सेनापतियों ने सुझाव दिया कि उसके पत्याग के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, क्योंकि सैनिक भी नहीं है। जार निकोलस ने मजबूरन सिंहासन छोड़ देने का निर्णय किया और अंतिम इच्छा जाहिर की कि उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र अलेक्सिस को न बनाकर उसके भाई माइकल को बनाया जाए। उत्तराधिकारियों का प्रश्न अभी स्पष्ट नहीं हुआ था कि तभी पेत्रोग्राद में गणतंत्र की मांग तेज होने लगी। मजबूरन मालिक ने अपना दावा छोड़ दिया और रूस के भविष्य तथा भावी संविधान के निर्णय पर छोड़ दिया। कार्यवाहक सरकार में प्रिदलोव, मिलियुकाम्फ तथा करेंस्की जैसे लोग थे। सरकार का चरित्र पूर्णतया मध्यम वर्गीय था और उसका स्पष्ट लक्ष्य था कि एक संवैधानिक सरकार की स्थापना एक संवैधानिक राजतंत्र की संभावना बनी हुई थी। यह सरकार युद्ध चलाते रहने के पक्ष में थी। यह स्पष्ट था कि सरकार व्यक्तिगत संपत्ति की वैधानिक तरीकों की हिमायती थी और रूस को वही मध्यम वर्गीय पूंजी स्वरूप देती थी जो यूरोप में प्रचलित था। इसी बीच मंशेविक लोगों के नियंत्रण में सोवियत का संगठन बढ़ने लगा। गांव में किसान नगरों के मजदूरों और सेना में सैनिक अपनी सोवियत बनाने लगे और बुर्जुआ सरकार के स्थान पर एक क्रांतिकारी सरकार बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक जल्दी बुलाने की मांग करने लगे। उन्होंने सारे देश में सोवियत की प्रतिनिधि सभा अप्रैल 1917 में बुलाई और साम्राज्यवाद का के अंत तथा आत्मनिर्णय का नारा दिया। उसने भी युद्ध के पक्ष में निर्णय लिया और मुख्य रूप से भूमि के वितरण की वकालत की। इसी दौरान लेनिन स्विट्जरलैंड से पोत्रोग्राद पहुंच चुका था। उसने दूसरी क्रांति का नारा दे दिया। पोत्रोग्राद में उसका चमत्कारी ढंग से प्रभाव बढ़ रहा था। इससे एक ओर कार्यवाहक सरकार दूसरी ओर मेंशेविक आतंकित हो उठे। फलतः उन्होंने बोल्शेविक के विरुद्ध मिलकर मोर्चा बनाने के लिए समझौता कर लिया और मेंशेविक सरकार में शामिल हो गए। आंतरिक सुधारों के विषय पर भले ही मतभेद हो, युद्ध जारी रखने के विषय में दोनों एकमत थे, इसलिए उन्होंने मित्र राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन राजधानी का प्रबंध नई सरकार के हाथों से निकलता जा रहा था। अगला हेडिंग है लेनिन। व्लादिमीर इलियच इलियानो, जिसे सारी दुनिया लेनिन के नाम से जानती है, 1870 में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा। उसके पिता सरकारी शिक्षा अधिकारी थे, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद उसकी माँ हो जाने से लेनिन की माँ को माँ के साये में ही पलना पड़ा। माँ अद्भुत धैर्य और परिश्रम वाली महिला थी। लेनिन के विद्रोही मन में उन्हें कभी रोका नहीं, लेकिन लेनिन के घर का प्यार नसीब होता रहा। जार अलेक्जेंडर तृतीय पर बम फेंकने के अपराध में पकड़े गए उसके बड़े भाई किशोर अलेक्जेंडर को गोली से उड़ा दिया गया। लेनिन ने जीवन का लक्ष्य और उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना हो गया जो अन्याय और आतंक पर आधारित थी। उसने अपना व्यक्तिगत क्षोभ धीरे धीरे एक वैज्ञानिक स्वरूप से पुष्ट किया और अध्ययन मनन में वह इस नतीजे पर पहुँचा कि समाज में जब तक मेहनत कश लोगों की सत्ता कायम नहीं हो जाती, अन्याय समाप्त नहीं हो सकता। लेनिन को छात्र जीवन से ही जारशाही का शिकार होना पड़ा, क्योंकि अलेक्जेंडर के भाई और उग्रवादी के रूप में उसे जाने जाने लगा था। उसे विश्वविद्यालय से निकाला गया, जेल में भी जाना पड़ा, परंतु उसका निश्चय बढ़ता ही गया। किसी तरह वकालत की परीक्षा पास कर वह वकील बन गया और त्रस्त लोगों की हितों में रक्षा में असाधारण उत्साह का परिचय देने लगा। वह सोशल डेमोक्रेट दल का सक्रिय सदस्य हो गया और उसका कार्यक्षेत्र पूरा देश हो गया। उसने मार्क्सवाद का विशद अध्ययन किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि इसके बिना रूस ही नहीं, किसी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वह उन सिद्धांतों को अपने दल की कार्यनीति के परिणत करने के लिए लड़ता रहा और उसके दल के नरम लोगों से उसका विरोध बढ़ता रहा। अंत में 1909 में वह विरोध प्रकट हो गया। बोल्शेविक समर्थक समाज में आमूल परिवर्तन के पक्षधर थे और यह परिवर्तन क्रांतिकारी ढंग से करना चाहते थे। 1906 में जब ड्यूमा की स्थापना के साथ रूस में पहली बार क्रांतिकारी परिवर्तन हुए तो लेनिन पेत्रोग्राद में था और उसने क्रांति में सक्रिय हिस्सा लिया। इसके बाद रूस में रहना असंभव हो गया। 11 वर्षों बाद वह पश्चिमी देशों में उनके कानून से बचते हुए रूस की क्रांतिकारियों को संगठित करता रहा। उसने ज्यादातर समय पेरिस और ज्यूरिख में बिताए, लेकिन सारे यूरोप में क्रांतिकारियों से उसका संपर्क बना रहा। इसी बीच उसने कई महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखें लिखी। इस्क्रा नामक ऐतिहासिक पत्र का संपादन भी किया, जिसकी प्रतियां हजारों मील दूर रूस में पहुंचाई जाती थी और रूस के क्रांतिकारी उससे दृष्टि पाते थे तथा अपनी रणनीति निश्चित करते थे। यह एक बेमिसाल उदाहरण है कि इतनी दूर से भी कोई इतने बड़े आंदोलन का नेता बना रहे। उसने कितने ही सम्मेलनों में भाग लिया और दुनिया को समाजवादी आंदोलनों को भटकने से बचाया। इसी समय दूसरी क्रांतिकारी प्लेखानोव की भी निर्वासित था और उसने लेनिन के सिद्धांतों से मतभेद हो गया। सारे यूरोप में मार्क्सवादी विभाजित हो चले थे। लेनिन ने तीन रात एक करके आंदोलन को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जब उसका टूटना निश्चय हो गया तो बहुमत को बहुमत को सही और वैज्ञानिक समाजवाद से जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। इस दौरान रूखा सूखा खाकर अपने छोटे से कमरे में रहकर वह अध्ययन मनन लेखन करता रहा। मार्क्सवाद की उसने व्याख्या की और उसे समय के अनुसार विकसित किया। अपने आदर्श पत्नी क्रुप्स्काय का सहयोग उसे निरंतर मिलता रहा और उसका घर स्नेहसिक्त अतिथि नेतृत्व के लिए सदैव खुला रहा। जब युद्ध शुरू हुआ तो लेनिन पहला व्यक्ति था जिसने घोषणा किया कि यह एक साम्राज्यवादी युद्ध है, जिसने दुनिया के श्रमजीवियों को कोई लाभ नहीं होगा। उसने रूस की घटनाओं से संपर्क बनाए रखा और उपयुक्त समय का इंतजार करता रहा। जब मार्च 1917 में पहली क्रांति हुई तो उसने तत्काल रूस पहुंचने का निर्णय किया। नई सरकार ने राजनीतिक लोगों पर से प्रतिबंध हटा लिया और लेनिन शीघ्र ही रूस पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण करना चाहा, लेकिन रूस जाए कैसे? मित्र राष्ट्र उसके विरोधी थे और यात्रा के बीच में ही वह गिरफ्तार हो सकता था। उसने जर्मनी के सम्राट विलियम से संपर्क किया। जर्मनी सरकार जानती थी कि लेनिन युद्ध का विरोधी है और रूस पहुंचकर यदि वह युद्ध बंद करवा सका तो जर्मनी का पूर्वी मोर्चा शांत हो जाएगा और वह पश्चिमी मोर्चे पर संगठित ढंग से युद्ध चला सकेगा। जर्मनी की सुरक्षा में उसे एक रेल के डब्बे में गुप्त रूप से रूस की यात्रा की और अप्रैल 1917 में जब वह पेत्रोग्राद पहुंचा तो रूस में बिजली दौड़ गई। बिना प्रचार के लाखों लोगों ने उसका स्वागत किया और स्टेशनों पर भी उन्नत भीड़ के सामने लेनिन ने घोषित किया कि रूस क्रांति पूरी नहीं हुई है, एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। अब राजधानी का वातावरण बदल गया। नई सरकार ने अभी तक संविधान सभा की बैठक नहीं बुलाई थी। सेना में क्षोभ बढ़ता जा रहा था, मजदूर बेरोजगार थे, कृषि में कुछ महीनों में ही परिवर्तन होना असंभव था, इसलिए किसान भी रुष्ट थे। सरकार दिवालिया हो चली थी, न तो कारखाने पर मजदूरों का अधिकार हुआ था, न सामंतों की जमीन ली गई थी, न ही युद्ध रुका था। नई सरकार ने रूस की जनता के जीवन पर कोई प्रभाव का असर नहीं पड़ा था। ऐसी दशा में शासन जार करे या एक प्रतिनिधि मंडल, जनता को इससे क्या लेना देना था। कार्यवाहक सरकार ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों में फूट थी। प्रधानमंत्री लाफे और युद्ध मंत्री केरेंस्की में भी मतैक्य नहीं था। इन स्थितियों में लेनिन ने फायदा उठाया और उसने नई सरकार पर खुला प्रहार करना शुरू किया। बिना एक क्षण भी आराम किए उसने बोलेस्की दल को संगठित करना और अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने जिनोविक, कामेनेफ, स्टालिन आदि का सहयोग प्राप्त था। अभी हाल ही में उसने एक प्रखर बुद्धिजीवी त्रास्की का सहयोग मिला जो रूमानी विचारों का व्यक्ति था, लेकिन उसने लेनिन का नेतृत्व पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। सारे बोल्शेविकों को लेनिन के सर्वमान नेता था और आंदोलन का सूत्र उसके हाथ में था। उसने देश के सामने सर्वहारा क्रांति का नया कार्यक्रम रखा जिसमें संपत्ति पर समाज का अधिकार, युद्ध स्थगन, किसानों, मजदूरों और सैनिकों को सोवियत का शासन और उत्पादन तथा वितरण पर राज्यों के अधिकार की बात प्रतिपादित की गई थी। देश के सामने नई संभावनाएं आईं। जब जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में कार्यवाहक सरकार की सेनाएं परास्त होने लगी तो धैर्य टूट गया। मजदूरों और सैनिकों ने लाखों की संख्या में प्रदर्शन किए और 1917 में नई सरकार के हाथ से सत्ता छिन गई। दूसरी क्रांति ने सारे बोल्शेविकों को और उसके नेता लेनिन के हाथों में दे दी। सारी सत्ता बोल्शेविकों और उसके नेता लेनिन के हाथों में दे दी, लेकिन लेनिन ने अपनी अभूतपूर्व योग्यता का परिचय दिया और अब उसने दिखाया कि वह एक असाधारण राजनेता भी है। उसने तत्काल जर्मनी से संधि कर ली और रूस के राजनीतिक परिवर्तन के साथ आर्थिक और सामाजिक संरचना को नया स्वरूप देना शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मदद पहुंचाई, लेकिन लेनिन त्रास्की के कुशल संगठन और लेनिन के नेतृत्व में लाल सेना ने गृह युद्ध में विजय पाई। 3 वर्षों के भयानक कठिनाइयों के बावजूद क्रांति की जड़ें जम गई और दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। क्रांति के बाद 7 वर्षों तक लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी समाज का संगठन करने में व्यवहारिक और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रदर्शन किया। समाज का सारा ढांचा बदल गया, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो गई, सहकारी आंदोलन बढ़ा, उद्योगों में मजदूरों का प्रबंधन शुरू हो गया, सारे रूस के गणतंत्रों का सोवियत संगठित हुआ और कृषि तथा उद्योग दोनों में उत्पादन क्रांति काल के पहले से ऊपर उठ गया। इसी बीच लेनिन की हत्या के प्रयास भी किए गए। एक बार उसे गोली भी लगी, जिसका उद्दाम जीजी विशा और निस्सीम उत्साह के कारण वह अपने मिशन में लगा रहा। अंत में 40 वर्षों के अनवरत संघर्ष से उसका शरीर टूट गया और 1924 में उसकी मृत्यु हो गई। लेनिन केवल एक क्रांतिकारी नहीं था, वह एक विद्वान विचारक और मार्क्सवाद की उसकी व्याख्या ने वैज्ञानिक समाजवाद को ग्राह्य और व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनेता भी सिद्ध हुआ और क्रांति को क्रियान्वयन करने में अभूतपूर्व प्रतिभा दिखाई। वह क्रांति के सिद्धांतों तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों के साथ योग्यता के कारण अद्वितीय बना रहा। रूस ही नहीं, सारी दुनिया के श्रमजीवियों में आशा तथा विश्वास का संचार करने में उसको सफलता मिली। उसने समाज के विकास के उस दौरों को प्रशस्त किया जिसमें वर्ग संघर्ष में श्रमिकों की अनिवार्य जीत के साथ सत्य निहित है। अगला हेडिंग है अक्टूबर की क्रांति। तो आइए शुरू करते हैं अक्टूबर की क्रांति। कार्यवाहक सरकार ने सोचा था कि मित्र राष्ट्रों की ओर से जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विजय मिलने पर सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा और परिस्थिति नियंत्रित करने में आसानी होगी। उसने दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हमले की योजना बनाई थी क्योंकि वहां सफलता की अधिक संभावना थी। अनुशासन के अभाव में इस योजना को दुश्मन का पता चल गया और जर्मनी ने उस क्षेत्र में ऑस्ट्रिया के मोर्चे को मजबूत कर दिया। जून में रूस को थोड़ी सफलता मिली, लेकिन शीघ्र ही जर्मनी और ऑस्ट्रियाई फौजों ने आक्रामक लड़ाई शुरू कर दी और रूसी सेना में अराजकता फैल गई। सैनिकों ने विद्रोह कर अपने अफसरों को गोली मार दी और जर्मन फौजें तेजी से रूस में पहुंचने लगे। नई सरकार का अंतिम सहारा भी टूट गया। एक तरफ अनिर्णय और अराजकता थी तो दूसरी तरफ बोल्शेविक दल ने सुनियोजित कार्यक्रम घोषित किया। उसकी नीतियों में जनता के लिए आशा और आश्वासन था, इन नीतियों का मुख्य आधार था। युद्ध का तत्काल अंत और जर्मनी से संधि। सामंतों की भूमि पर बिना मुआवजा दिए और बिना कानून की बारीकियों पर ध्यान दिए तुरंत अधिकार। कारखानों पर मजदूरों का अधिकार तथा प्रबंध। संपूर्ण उत्पादन और वितरण पर राष्ट्र का नियंत्रण। हर स्तर पर मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियत के हाथों में शासन और वर्तमान सरकारी तंत्र का अंत। संपत्तिधारी वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का अंत। किसान को चाहिए थी भूमि, मजदूर को चाहिए था रोजगार। दोनों को इस घोषणा से उनका प्राप्त ही नहीं, एक ऐसा अधिकार मिलना था जिनकी साधारणतया कल्पना भी कठिन थी। जनता राजनीतिक रूप से पूरी तरह दीक्षित नहीं थी, परंतु इन कार्यक्रमों को वह उचित समझने लगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि अब देशभक्त के नाम पर जार के लिए लड़ने से उनका मोह भंग हो गया था। जर्जर देश लगातार हारता हुआ आखिर कब तक लड़ सकता था? किसान ही नहीं, सैनिक भी युद्ध से तंग आ चुके थे। इस कार्यक्रम में लगातार युद्ध स्थगन का आश्वासन था। कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि बोल्शेविक कार्यक्रमों के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई और कार्यनीति सफल होते गए। 16 जुलाई को पहला विद्रोह हुआ और पेत्रोगार्द की सड़कों पर युद्ध बंद करो पूंजीवादी मुर्दाबाद सोवियतों को के नारे गूंज उठे। सैनिक और मजदूर साथ थे, लेकिन उनको दबा दिया गया। करेंस्की ने मोर्चे से एक सेना के इस विद्रोह के दमन के लिए राजधानी भेजी थी, लेकिन लेनिन ने समझ लिया कि तत्काल कदम उठाने की अपेक्षा सारी सेना को अपनी ओर कर लेना आवश्यक है। केवल राजधानी पर नियंत्रण होने से काम नहीं चलेगा, सारे देश में एक साथ कुछ करना जरूरी है। इसी बीच सरकार के आपसी झगड़ों के फलस्वरूप सत्ता करेंस्की के हाथ में आ गई और वह प्रधानमंत्री हो गया। वह सरकार को मजबूत करने का प्रयत्न शुरू से ही करने वाला था और एक ऐसी नई स्थिति पैदा हो गई। बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ता देखकर दक्षिणपंथी उग्रवादियों ने सर्वहारा की तानाशाही के स्थान पर सेना की तानाशाही का नारा दिया। जनरल कार्निलाफ ने करेंस्की को अल्टीमेटम दिया कि वह राजधानी में मार्शल लॉ की घोषणा कर दे और कार्यवाहक सरकार को भंग कर दे। उसने राजधानी की ओर से एक सेना भी भेज दी। अब मंत्रिमंडल ने करेंसकी के को सारे अधिकार सौंप दिए और कार्निलाफ गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड से जनता आतंकित हो गई। जारशाही के फिर लौटने की संभावना मात्र से लोग भयभीत हो गए। यह भी प्रचार हुआ कि करेंसकी इस षड्यंत्र में शामिल था और इसका सीधा परिणाम था कि बोल्शेविकों का प्रभुत्व तेजी से बढ़ता गया। जो ढुलमुल थे वे उनके कार्यक्रमों को ही विकल्प समझने लगे। अक्टूबर 1917 में ऐसी स्थिति आ गई कि मध्यम वर्ग की स्थिति डमाडोल थी। चारों ओर धुआंधार प्रचार हो रहा था। बोल्शेविक दक्षिणपंथी और जर्मन प्रत्येक माध्यम से सरकार को कमजोर कर रहे थे। सेना में किसी दिन तो पूरा का पूरा रेजिमेंट ही विद्रोह कर देता। युद्ध के क्षेत्र में भयावह खबरें आ रही थीं। जर्मनी तेजी से बढ़ रहे थे और राजधानी पर भी खतरा बढ़ रहा था। आर्थिक स्थिति बेकाबू थी। असहाय करेंसकी ने मॉस्को को ही राजधानी रखने का निर्णय लिया। जब निर्णायक घड़ी आ गई तो बोल्शेविकों ने एक बार घोषणा की, सेना में शांति, किसानों को जमीन, मजदूरों को कारखाने। क्रांति में पहले एक महीना में बोल्शेविक प्रभाव ज्वार की तरह बढ़ा। 7 नवंबर को सोवियतों का सम्मेलन होने वाला था। प्रतिनिधियों ने इस बार बोल्शेविकों का बहुमत था। लेनिन ने बोल्शेविक दल की केंद्रीय समिति में सशस्त्र विद्रोह का प्रस्ताव पास कर दिया और गुप्त रूप से सारी कार्यवाही पूरी कर ली गई। 6 नवंबर को बोल्शेविक दल की घोषणा हुई और प्रतिक्रियावादी सिर उठा रहे हैं और सोवियत कांग्रेस तथा संविधान के विनाश पर उतारू हैं। रातों रात सारे दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों पर बोल्शेविक समर्थक सैनिकों ने कब्जा कर लिया और सुबह होते ही कार्यवाहक सरकार के अंत की घोषणा कर दी गई। सारी राजधानी में एक स्वर गूंज रहा था, मजदूर, सैनिकों और किसानों का इनकलाब जिंदाबाद। दिन में ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। करेंसकी भाग निकला। सोवियतों की कांग्रेस ने इस परिवर्तन को स्वीकृति दे दी और रूस में सोवियत सरकार की स्थापना हो गई। लेनिन ने तत्काल जर्मनी से ब्रेस्ट लितोवस्क की संधि कर ली। इसे एक बार और सुने। लेनिन ने तत्काल जर्मनी से ब्रेस्ट लितोवस्क की संधि कर ली और रूस युद्ध से अलग हो गया। पश्चिमी यूरोप महायुद्ध में व्यस्त था, वरन रूसी क्रांति के दमन में अंतर्राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन जरूर होता। इसी बीच गांव-गांव में क्रांति के समर्थकों और विरोधियों में संघर्ष चलता रहा। लाल सेना को विदेशी शक्तियों की मदद से लड़ रहे पुरातन व्यवस्था के समर्थकों, प्रतिक्रियावादियों, रूसी से भारी मोर्चा लेना पड़ा। मजदूर कारखाने का तत्कालीन समुचित प्रबंधन नहीं कर सके। किसान राष्ट्र की भूमि का अर्थ न समझकर कृषि में रुचि नहीं ले सके। वितरण व्यवस्था लड़खड़ा गई। महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। लेकिन सब कुछ के बावजूद सदियों से संतरस्त लोगों की चेतना, लाल सेना का कुशल संगठन, बोल्शेविक दल की लगन और स्थितियों पर नियंत्रण तथा लेनिन के असाधारण नेतृत्व के कारण क्रांति सफलता की ओर तेजी से बढ़ती चली गई। 2 दशकों के भीतर ही रूस में मध्ययुगीन सामंती और रूढ़िवादी समाज के स्थान पर एक आधुनिक औद्योगिक और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित गतिमान समाज की स्थापना हो गई। फ्रांस की क्रांति को कुछ पश्चिमी इतिहासकारों ने ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया है। यह सच है कि विकासोन्मुख मानव समाज की यात्रा में वह क्रांति एक निर्णायक मोड़ थी, जिसमें सामंती शक्तियों पर बुर्जुआ शक्तियों ने तथा मध्ययुग पर आधुनिकता ने विजय पाई। लेकिन यह भी सच है कि वह क्रांति अपूर्ण रह गई, भटक गई और समाज के एक छोटे से वर्ग के हित की ही पूर्ति कर सकी। इस क्रांति ने परिवर्तन किए। लेनिन ने उसके आर्थिक आधार और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सका लेकिन उसके आर्थिक आधार और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सके। बिना अर्थतंत्र को बदले और समाज के मूल ढांचे की नई संरचना के क्रांति अस्थायी नहीं होती और परिवर्तन का आधार व्यापक नहीं होता। फ्रांस में यही हुआ। रूस की क्रांति मानव समाज के इतिहास में पहला प्रयास थी जब बाह्य परिवर्तनों के स्थान पर सामाजिक संरचना की नई व्याख्या की गई। व्याख्या के साथ उसे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप में मौलिक परिवर्तन कर उसे सर्वथा नई स्वरूप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें बाद की सफलता भी मिली। इस क्रांति में भी उन लोगों की प्रमुखता नेतृत्व के स्तर पर बनी रही, जिसमें रूसी भाषा में इंटेलिजेंसिया कहते हैं। लेकिन यह वर्ग जैसा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द रशियन ट्रेडिशन में तिरो जामुएली ने लिखा है, पश्चिमी यूरोप में बुर्जुआ मध्यम वर्गियों की जैसा नहीं था। यह अर्ध शिक्षित और जागरूक लोगों में शामिल था। कुछ भी हो, क्रांति मुख्यतः श्रमजीवियों और सर्वहारा के लिए उन्हीं लोगों ने की थी, जो कुछ रूस में संभव हुआ उसके लिए दुनिया में अन्य शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित श्रमजीवियों ने भी अपने अपने देश में संघर्षरत हैं। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।